इति ग्रंथ श्री साजन जी का जीवन चरित्र नवयुग चेतना। यह तो आप सबको विदित ही है कि अब कलयुग का समय काल चल रहा है। कलयुग अर्थात अंधकार अज्ञान, जिसका नतीजा है नासमझी। नासमझी के कारण मनुष्य अपनाता जाता है निंदा क्रोध अहंकार के स्वभाव, जिससे उत्पन्न होता है रोना छुकना मार काट आपसी वैर विरोध और द्वेष, और फिर परिवारों समाजों तथा देशों के टूटने का सिलसिला आरंभ होता है। इस परिस्थिति में मनुष्य केवल अपने ही लिए जीने के स्वभाव में चला जाता है, जिससे आपसी स्नेह एक दूसरे के प्रति आदर सत्कार और परोपकारी वृत्ति समाप्त होती जाती है और मनुष्य केवल अपने ही लिए समेटने की होड़ में लग जाता है, जिससे मनुष्य के मन से संतोष धैर्य क्षमा और यहाँ तक कि शांति भी समाप्त हो जाती है और भाई भाई का एक दूसरे के प्रति नफरत का स्वभाव बनता है। इस प्रकार एकता भाव टूटता जाता है और मनुष्य की मनोस्थिति एक अजीब और दुखदायी रूप धारण करती है। मनुष्य जाति को इस दुखदायी मनोस्थिति में से उबारने के लिए संसार में कई संत महात्मा ज्ञानी ईश्वर प्रेमी आए और चले गए और उनके अनुयायियों ने उनके द्वारा बताए ज्ञान जीवन में अपनाई मान्यताओं को ग्रंथ रूप अथवा उनके जीवन चरित्र के रूप में एकत्रित कर मंदिर गुरुद्वारों आदि में स्थापित कर दिया। इन ग्रंथों की कथा वार्ता गायन चलता रहा और अब भी चल रहा है, पर इसमें लिखित भावों को कोई विरले ही अपना पाए, क्योंकि इन ग्रंथों को लेकर अनुयायियों ने अलग अलग मत मतांतर खड़े कर दिए, जिससे हर मत का ज्ञान एक सीमा में बंधता चला गया, जिसका नतीजा आप सबके सामने ही है कि इतने महान सज्जनों के मार्गदर्शन के बावजूद भी इंसान की विचारधारा और कर्म धर्म संगत नहीं बन पाए। इन ज्ञानियों संत महात्माओं मार्गदर्शकों ने चाहा हो या ना चाहा हो उनके शरीरों की तस्वीरों की पूजा आरंभ करा दी और इस तरह बनते गए अनेकों भगवान अनेकों गुरु अनेकों मंदिर मस्जिद समाज गुरुद्वारे और अनेकों भिन्न भिन्न युक्तियां बनी, भक्ति की मान्यताएं बनी और अलगाववाद पनपते पनपते टकराव में तब्दील हो गया। कोई हिंदू बना, कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना, कोई ईसाई बना, ना जाने कितनी ही विचारधाराएं बनी और कुछ मनुष्य किसी विचारधारा में जा फंसे और कुछ किसी। इससे उत्पन्न हुई आपसी द्वेष की लहर, परिणाम स्वरूप सज्जन सज्जन से अलग हुए, परिवार परिवारों से अलग हो गए, समाज व देश आपस में एक दूसरे से अलग होते चले गए और जुट गए एक दूसरे को जीतने के लिए विनाश का समान, जिससे उत्पन्न होता चला गया भय का वातावरण, शारीरिक व मानसिक रोगों का वातावरण और अकाल मृत्यु का वातावरण, अहंकार का वातावरण। ऐसे में जबकि युग का वातावरण इतना दूषित हो चुका है, आवश्यकता है एक नई रोशनी की, नई चेतना की, जो कि इंसान के अंदर सत्य ज्ञान पवित्र विचार और सज्जन भाव का संचार करे, ताकि उनके कर्म उत्तमता धारण करें और इस प्रकार इंसानियत जो वहमों भ्रमों वैर विरोध मतभेद का शिकार हो चुकी है वह इस हानिकारक स्वभावों से उबर सदाचारी बने। ये तभी हो सकता है अगर हर व्यक्ति एक ही ईश्वर इस सृष्टि के रचयिता की सर्वोच्चता पर दृढ़ विश्वासी बने और केवल उसी की पूजा उसी का गुणगान उसी द्वारा बताया कुदरती ज्ञान अपनाएं। ये अति आवश्यक है, क्योंकि यही हमारे अंदर फैले द्वेष भाव से बचा हमें फिर से एकता अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है, आपस में जोड़ सकती है। यह जान लो कि अधिकतर संसारी व पारमार्थिक ज्ञान दर्शक मार्गदर्शक लोभ लालच के शिकार होने के कारण सच्चे धर्म की शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं रखते और ना ही मनुष्यता के कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं। वह केवल अपनी पूजा, अपनी मानता, अपने ही पेट की पालना और अहंकारवश अपने आप को भगवान मनवाना चाहते हैं। ये कलयुग का ऐसा समय है, ऐसी परिस्थिति है कि मनुष्य को अत्यंत सतर्कता की आवश्यकता है। उनके अंदर दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है कि परमात्मा एक है और केवल उसी की ही भक्ति व उपासना करनी चाहिए। बाकी सब की पूजा का त्याग आवश्यक है, क्योंकि एक ही की पूजा मानता और एक ही का ज्ञान विज्ञान इस ब्रह्मांड रचना को समझने के लिए और कुदरती शब्द विचार अपनाना ही हमारे मन मस्तिष्क में प्रेम, प्यार, एकता, उन्नति व शांति भर सकता है। इससे हमारे अंदर सत्य का सूर्य फिर से उदय हो, अब तक अपनाए ज्ञान अज्ञान का निरीक्षण कर हमारी बुद्धि को सत्य ज्ञान में खड़ा कर हमें यश कीर्ति का प्रतीक बनाएगा और हमारी कर्म शक्ति, जीवन शक्ति, आत्मिक शक्ति, वाह्य शक्ति सचेत हो एहसास कराएगी कि आत्मा और परमात्मा सदा अजर, अमर, स्वतंत्र और एक दूसरे को समोए हुए हैं। इसलिए हमारा सब धर्म संचालकों को सुझाव है कि वे मिल बैठें और परमार्थिक ज्ञान जो भिन्न भिन्न ग्रंथों में वर्णित है उसको एकत्रित कर एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण करें जिसके ज्ञान से हर मनुष्य का मन मंदिर फिर से प्रकाश में हो उठे और वह अपनी सत्ता को समझते हुए अपने अंदर निहित भगवान को जान सके, पहचान सके, ताकि जीवन में सुख, शांति और आनंद बने। याद रहे, जीवन में हर कार्य समयानुसार करना ही उचित है। स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई मेहनत से अर्थात अनुशासित ढंग से अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए करना अति आवश्यक है। ये पढ़ाई भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होती है और समाज में मान सम्मान पाने की इच्छा हेतु आवश्यक है। कहने का तात्पर्य ये है कि हर सज्जन में जो कुछ बनने की इच्छा निहित होती है उसकी पूर्ति के लिए भौतिक ज्ञान की स्पष्टता होनी चाहिए। इस प्रति हर सज्जन को जागरूक रहते हुए अपने इस बाल युवा समय काल में उसे ठीक पूरा कर लेने का भरसक प्रयत्न करना आवश्यक है। ऐसा करने से बुद्धि तीक्ष्ण बनती है। याद रहे, भौतिक ज्ञान में या शारीरिक स्वस्थता में कमजोरी इंसान की बुद्धि को कमजोर बना देती है। कमजोर बुद्धि वाला सज्जन अपने जीवन में उन्नति की शिखर सीमा को कभी छू नहीं सकता और असहाय दूसरों को उन्नति पथ पर अग्रसर होते देख द्वेष में, ईर्ष्या भाव में फंस मानसिक संतुलन ठीक नहीं रख पाता। परिणाम स्वरूप उसे अपने प्रति नफरत होने लगती है और इसी कारण वह शीघ्रतया विकारों में जा फंसता है। कहने का तात्पर्य ये है कि समाज में रहते हुए भी वह सामाजिक धर्म नहीं निभा पाता। याद रहे, भौतिक ज्ञान ना होने पर उसकी अस्पष्टता होने के कारण सज्जन जीवन भर अपनी व अपने परिवार की इच्छा की पूर्ति परिपूर्णता से नहीं कर पाता। इसका मुख्य कारण उसको धन अर्जना में कठिनाई बनी रहती है और फिर उसके पास पछतावे के सिवाय और कुछ भी नहीं रहता। ना तो अपनी शारीरिक स्वच्छता के लिए वह अच्छा खा पी सकता है और ना ही अपने रहन सहन की स्वच्छता रख सकता है। यहाँ तक कि आपसी व्यवहारों में कटुता ही कटुता हो जाती है, जिससे सज्जन का जीवन दुख में व्यतीत होता है। इस प्रकार समयानुसार भौतिक ज्ञान प्राप्ति न करने के कारण एक सज्जन अनेक सज्जनों के दुख का कारण बनता है। याद रहे, जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति का नेतृत्व आवश्यक है। तीक्ष्ण बुद्धि वाला ही मैत्री भाव अपना सकता है और निभा सकता है। कमजोर बुद्धि वाला सदा अधीन रहता है, उसका संग दूसरों को अच्छा नहीं लगता, अर्थात हम कह सकते हैं कि वह नफरत का पात्र बनता है। युवा अवस्था आने तक जिस सज्जन की बुद्धि उसका संचालन संभाल लेती है, वह सज्जन किसी प्रकार का भी नेतृत्व संभालने में सक्षम बन जाता है। ये नेतृत्व फिर चाहे विवाह से पहले जीवन का हो, या विवाह उपरांत के जीवन का, या फिर पढ़ाई काल का, यहाँ तक कि वह सज्जन जीवन के लिए आवश्यक धन अर्जना करते हुए जन समूह को साथ ले परोपकार भी कर सकता है। अगर भौतिक ज्ञान के साथ आत्मिक ज्ञान जुड़ जाए तो सज्जन की बुद्धि अति तीक्ष्णता ग्रहण कर सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु व विषय को स्पष्टता से ग्रहण कर अपने जीवन में अपने सुख के लिए, सबके सुख के लिए उसका प्रयोग कर सकती है। ऐसे सज्जन का जीवन के हर क्षेत्र में विजयी होना निश्चित होता है। याद रहे, अज्ञानी किसी भी प्रकार का नेतृत्व नहीं संभाल पाता, क्योंकि वह सदा मन बुद्धि और कर्म से कमजोर बना रहता है। इसीलिए वह खुद दुखी रहता है और अपने संगी साथियों परिवारजनों को भी दुख देता रहता है। ज्ञान के अभाव के कारण वह अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पाता। इस प्रकार ना ही वह छोटों से आदर पा सकता है और ना ही बड़ों से प्यार पा सकता है। फर्ज अदा ठीक से ना निभाने के कारण समय समय पर डांट खाना, यातना सहना उसको धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर बना देता है। जिस परिवार में ऐसा सज्जन हो वहाँ सदा लड़ाई झगड़े का वातावरण बना रहता है और वह परिवार औरों के लिए एक तमाशा बन के रह जाता है। याद रहे, जो भी आपके बहन भाई माता पिता परिवार में हैं, उन सब के साथ सज्जन भाव से विचरना आवश्यक है। आपसी व्यवहार धैर्यपूर्ण हो, आपसी प्रीत स्वच्छ हो और सबके प्रति फर्ज अदा निभाने से न सकुचाएं। अपने जीवन में इस व्यवहारिकता को अपनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने के लिए सदा तत्पर रहे। ऐसी व्यवहारिकता से आप सज्जन सबके प्रिय बन अपने जीवन की महानता को समझ जाओगे। अगर आपके अंदर महान बनने की इच्छा है तो ये गुण अवश्य धारण कर लेना, अर्थात अनुशासन प्रिय बने रहते हुए जीवन का प्रत्येक कार्य समय अनुसार करना सीखना। जो अपने प्रति फर्ज अदा है कि मैं जीवन में कुछ बनूं, उसकी पालना भी भौतिक व आत्मिक ज्ञान प्राप्ति कर करना, अच्छे स्वभाव अपनाना और आजीवन उनमें स्थिर बने रहना, इसी से ही यश कीर्ति की प्राप्ति हो सकती है। याद रहे, विकारों में फंसना अर्थात बुरे स्वभावों को अपनाना बुजदिली है और हानिप्रद भी है, क्योंकि इससे बुद्धि संकीर्ण होती है, जिससे सांसारिक व पारमार्थिक ज्ञान अर्जना में रुकावट आती है। जान लो कि विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के स्वभाव से ही उपजते हैं। विकारों के व्यूह चक्र में फंसी हुई बुद्धि जीवन में सदा केवल प्राजाय को ही प्राप्त नहीं होती, अपितु सज्जन को दुख अवस्था में भी ले जाती है, जिससे सज्जन की शारीरिक व मानसिक स्वच्छता छिन्न भिन्न हो जाती है। इसलिए निर्विकार जीवन व्यतीत करना ही अर्थात सम संतोष धैर्य सच्चाई धर्म पर खड़े रहकर जीवन व्यतीत करना ही सुखी जीवन की निशानी है। याद रहे, आजकल जो भी विभिन्न मनोरंजन के साधन हैं, चाहे वह टेलीविजन है, किताबें हैं या कुछ और है, वह हकीकत नहीं है, ना ही जीवन की सुख जांचना है, क्योंकि इनको पढ़ने देखने व सुनने से आप जैसे युवा बच्चों का ख्याल भटक जाता है। ये सभी साधन आपके अंदर गलत भाव भर आपकी इंद्रियों को काम रूप बना कुरस्ते पर ले जाने के लिए उकसाते हैं, जिससे आप वैसा ही करने के लिए आतुर हो जाते हो जैसा कि पढ़ते सुनते व देखते हो। इस प्रकार नादानी में जो जीवन का सुख नहीं अपितु दुख है उसे अपना लेते हो। पर अब कोई भी ऐसा अविचार कर्म करने से पूर्व याद रखना, ऐसे स्वभावों में जाना तो आसान है पर इससे निकलना अति कठिन। अगर जीवन का सुख खरीदना चाहते हो तो सुचेती पकड़ना और कुछ भी धारण करने से पूर्व बुद्धिमत्ता व विवेकशीलता से उसका विश्लेषण कर ही उसे अपनाना। याद रहे, आलस्य के कारण शारीरिक ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता, जिससे भिन्न भिन्न रोगों की उत्पत्ति के कारण शरीर रोगी हो जाता है। जहां खुराक से शारीरिक स्वस्थता पनपती है वहां मेहनत से शारीरिक स्वस्थता दमकने लगती है। इसलिए सात्विक आहार लेना शारीरिक स्वस्थता के लिए आवश्यक है और मेहनत द्वारा स्वस्थता को बनाए रखना आवश्यक है। मेहनत को थकान नहीं समझना चाहिए और ना ही कठिनाई समझना चाहिए। मेहनत को अपनी ताकत और मजबूती समझना चाहिए, क्योंकि इसके जरिए शारीरिक पौष्टिकता मिलती है। जो केवल आहार पर जोर देता है और मेहनत नहीं करता वह दिखने में पहलवान अवश्य लगता है, पर हकीकत में वह सबसे कमजोर होता है। युवा अवस्था में ही अपनी रहनी बहनी में मेहनत का स्वभाव अपना लेना, हर अवस्था में ही परिश्रम करने के लिए सदैव तत्पर रहना, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ये सब जानने के पश्चात हर सज्जन को अपनी अपनी जांचना कर लेनी चाहिए और अपना जीवन प्रगतिशील और सुखमय बनाने के लिए स्वयं को तैयार कर लेना चाहिए। ये सबको सुझाव है कि अपने माता पिता का उचित रूप से आदर सत्कार करते रहना और उनका कहना अवश्य मानना। अपने बहन भाई से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा मत करना। थोड़ी बहुत तकरार हो तो ठीक है, पर मार पिटाई या गाली गलौज अच्छा नहीं लगता। इसलिए घर में जो भी बहन भाई हो उन्हें मारना नहीं। अन्य परिवारजनों के साथ भी धैर्य का स्वभाव अपनाते हुए विचरना। ये इसीलिए आवश्यक है कि आपको उन्हीं परिवारजनों के साथ रहना है, निभाना है, जिस परिवार में अपनी किस्मत अनुसार आपका जन्म हुआ। उन माता पिता बहन भाई संगी साथियों का संग कुदरत ने कर्मानुसार आपको दिया है। उनके साथ उचित ढंग से रहने में ही सुख है, वरना आजीवन रोते रहोगे। इसीलिए आप सबको सुझाव है कि जो भी परिवारजनों के स्वभाव हों उनको समझते हुए भाई बहन आपस में ठीक प्रेम रखना और माता पिता का भी ठीक प्रकार से आदर सत्कार करना। माता पिता के वे गुण, केवल वे गुण जो अपनाने योग्य हों वे ही अपनाना। परिवार के किसी भी सदस्य, चाहे वे माता पिता ही क्यों ना हो, उनके अंदर यदि कोई भी अवगुण हो, विकार हो, उसे अपनाने से पूर्व उसका उन पर प्रभाव भली भांति जान लेना। ये जान लेना कि किन स्वभावों की वजह से वह आपस में लड़ते हैं, झुकते रहते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं और फिर उनकी दिनचर्या किस ढंग से व्यतीत होती है। इस प्रकार उनका कोई भी अवगुण आपके अंदर घर नहीं कर पाएगा और फिर अवगुणों के कारण जो दुख वह वर्तमान जीवन में भुगत रहे हैं या भूतकाल में भुगत चुके हैं आपके जीवन काल में नहीं आएगा। फिर कह रहे हैं कि अपने परिवारजनों की रहनी बहनी आपसी व्यवहार को ना केवल देखना अपितु भली भांति समझना और फिर समझकर जो उनमें गुण हो केवल वही अपनाना। इस गुण ग्रहण प्रक्रिया के दौरान विवेक से काम लेना। याद रहे कि जो स्वभाव आपने युवा अवस्था तक धारण कर लिए उन्हीं के अनुसार ही आपके जीवन का समस्त दुख सुख निर्भर होगा। इन्हीं गुणों के आधार पर ही आपके जीवन के चरित्र का मापदंड होगा और समझ आएगी कि आप हकीकत में मनुष्य कहलाने के योग्य बने हैं या नहीं। इसीलिए अब मनुष्यता के गुणों को धारण करते हुए, यानी जो एक अपने व सबके प्रति सुखदायी होने का स्वभाव है, उस स्वभाव में आते हुए ईश्वरीय गुणों को अपनाना।